हरे कृष्ण। कल हम श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की चर्चा कर रहे थे। माधवेंद्र पुरी की जीवनी का श्रवण करने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, भक्ति में हमें उत्साह मिलता है। उनके पद चिन्हों में चलने से हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। ऐसे महान भक्तों का जीवन किसके बारे में हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। कल ये चर्चा हो रही थी कि किस तरह से माधवेंद्र पुरी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया और फिर उनको दूध पिलाया, तत्पश्चात उनके स्वप्न में आए और उनको जगह दिखाई जंगल में, जहां की वो अपने विग्रह के रूप में, गोपाल के रूप में छुपे हुए थे झाड़ियों में, और उनको आदेश दिया कि मेरी आप स्थापना करो। और माधवेंद्र पुरी ने सुंदर ढंग से गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की, अन्नकूट का महोत्सव मनाया और इस तरह से सारे ब्रजवासीगण और आसपास के गांव और प्रांतों के निवासी भी ऐसे अन्नकूट महोत्सव मनाते रहे। हमने ये देखा कि किस तरह से वास्तव में ये कहानी पहले ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बताई थी। जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे और माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे। तो पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा ईश्वरपुरी से सुनी और संन्यास लेने के थोड़े दिन बाद वो जब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे तो उस समय बालेश्वर नाम के शहर के पास में गांव है रेमुना, इस गांव में गोपीनाथ के मंदिर में गए थे, खीर चोरा गोपीनाथ। और इस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने अन्य भक्तों को यही कहानी सुनाई थी। उनके साथ में थे नित्यानंद प्रभु, दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित और मुकुंद। तो ये कहानी हम कल सुन रहे थे विस्तार में। तो आगे कथा बढ़ी, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बताया गोपीनाथ के मंदिर में बैठे हुए कि आगे अन्नकूट का महोत्सव चलता रहा और ऐसे भक्ति भाव से गोपाल जी की सेवा गोवर्धन के ऊपर लगातार हर दिवस 2 साल तक चलती रही। तो समझिए कि कितने भक्ति भाव से माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की सेवा का आयोजन किया। 2 साल के बाद में एक रात जब माधवेंद्र पुरी विश्राम कर रहे थे तो उनको स्वप्न आया और स्वप्न में गोपाल जी आए और कहने लगे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं इतने सालों से झाड़ियों में छुपा हुआ था कि इतना स्नान कराने के बाद भी 2 साल तुमने मेरा अभिषेक कराया है, गोविंद कुंड से कितने हजारों हजारों घड़ों में जल लाकर मेरा अभिषेक कराया है तुमने, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने सालों से मैं झाड़ियों में छुपा हुआ था और इतनी गर्मी लग गई है मुझे कि गर्मी अभी तक शरीर से मेरी गई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मलय चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर पर इसका लेप लगाओ। यही एक तरीका है जिससे कि मेरा शरीर शीतल हो सकता है और मेरी गर्मी की जो भावना है वो कम हो सकती है। अब देखिए ये दूसरी बार गोपाल जी माधवेन्द्रपुरी के स्वप्न में आए। पहली बार कब था? जब उन्होंने साक्षात सामने आके माधवेन्द्रपुरी को दूध पिलाया, और फिर उसके बाद में जब वो स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया कि मैं झाड़ियों में छिपा हुआ हूं और गांव वासियों के साथ में जाओ जंगल में और मुझे निकाल कर ले आओ, मेरी स्थापना करो, तो वो पहली बार स्वप्न में आए थे और ये दूसरी बार। तो माधवेन्द्रपुरी नींद से जब जागे तो उन्होंने देखा कि मुझे तो अभी तुरंत गोपाल जी के आदेश का पालन करना चाहिए। स्नान किया और जिन ब्राह्मणों को उन्होंने वैष्णव दीक्षा दिलाई थी और उन्होंने गोपाल जी के सेवा में जिनको लगाया था, फिर उनसे बातचीत की, ये देखा कि उनकी अनुपस्थिति में गोपाल जी की सेवा चलती रहेगी, अच्छी तरह से व्यवस्था कर ली उन्होंने और फिर चल पड़े दक्षिण भारत की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर। क्योंकि गोपाल जी की आदेश था कि जगन्नाथपुरी से जो मलय चंदन मिलता है वो मुझे चाहिए। अब ये मलय चंदन वास्तव में एक विशेष प्रकार का चंदन है। चंदन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो मलय प्रांत में, मलय पर्वत में जो चंदन मिलता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। मलय पर्वत वास्तव में पश्चिम घाट में जो नीलगिरी है वहां पे पाया जाता है। नीलगिरी का दूसरा नाम है, प्राचीन काल में इसे मलय पर्वत कहते थे। मलय मलेशिया देश का भी एक नाम है, जो समुद्र के उस पार भारत के दक्षिण भाग में एक देश है मलय, जिसको आज मलेशिया के नाम से जाना जाता है। वहां पे भी ये चंदन पाया जाता था, लेकिन आजकल वहां चंदन को छोड़कर वो रबर आजकल इसकी कृषि करते हैं। चंदन को ज्यादा कीमत नहीं देते वो लोग। ये मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, बोर्नियो, ये सब जगह जो है उस इलाके में, वहां वैदिक संस्कृति बहुत विस्तार में प्रचलित थी प्राचीन काल में, लेकिन अभी वहां मुसलमान राज चल रहा है तो वैदिक संस्कृति प्राय नष्ट हो गई है। तो वहां मलय चंदन भी मिलता था, लेकिन गोपाल जी का आदेश था कि ये मलय चंदन जगन्नाथपुरी से लेकर आओ। तो इसलिए माधवेन्द्रपुरी ने गोपाल जी के आदेश पालन करने के लिए तुरंत रवाना हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहां गोपाल जी मुझे भेज रहे हैं केवल चंदन लाने के लिए इतना दूर, ऐसा नहीं सोचा। चंदन तो शायद वहां भी थोड़ा कुछ मिल सकता था या किसी नौकर को भेज सकते थे, तुम लेकर आओ, लेकिन गोपाल जी का आदेश था उनको, तुम खुद लेकर आओ, तुम ही एकमात्र हो जो कि ये काम कर सकते हो, इसलिए तुम खुद जाओ। तो माधवेन्द्रपुरी खुद निकल पड़े और चलते चलते बंगाल में आए पहले, और बंगाल में जब वो शांतिपुर नाव के गांव में पहुंचे तो वहां उनकी भेंट हुई अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही शुद्ध भक्त थे और अब तक चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ नहीं था। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु अर्थात निमाय पंडित के पिता जगन्नाथ मिश्र से भी उम्र में बढ़ के थे, इतने बुजुर्ग थे वो, इतने वृद्ध थे, चैतन्य महाप्रभु से कई साल बड़े थे। और माधवेन्द्रपुरी तो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे, इसलिए जब माधवेन्द्रपुरी और अद्वैत आचार्य की मुलाकात हुई शांतिपुर में, उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट भी नहीं हुए थे पृथ्वी लोक पर, तो बहुत साल पहले की बात। तो अद्वैत आचार्य ने देखा माधवेन्द्रपुरी के अद्भुत भक्ति को, किस तरह से वो भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे थे, और तुरंत अद्वैत आचार्य समझ गए कि माधवेन्द्रपुरी एक महाभागवत है, वरना ऐसे लक्षण प्रकट करना असंभव था। वृंदावन में और कई जगह ऐसे संप्रदाय हैं जिनको सहजीय कहते हैं, और ये सहजीय क्या कहते हैं, ये भक्ति को बहुत सहज बनाते हैं, इसलिए उनको सहजीय कहते हैं। सहजीय मतलब वो लोग जो केवल भक्ति के लक्षण प्रकट कराने का प्रयास करते हैं, शरीर में कंपन और आंखों से अश्रुधारा और इस तरह से लक्षण प्रकट कराते हैं, लेकिन वास्तव में हृदय में उतनी भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन केवल नकली बनावटी लक्षण प्रकट करने का प्रयास करते हैं और वो सोचते हैं कि रोने से भक्ति आएगी। ऐसा नहीं होता, रोने से भक्ति नहीं आती, लेकिन भक्ति होने से रोना आता है, फिर आंसू आते हैं। लेकिन केवल नकली रोते रोते रहने से भक्ति नहीं आएगी। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जब भी एक स्त्री जो गर्भवती होती है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो स्त्री को बहुत दर्द होता है, और उस समय से दर्द के समय वो बहुत चीखती है, जोर से चिल्लाती है, कभी दर्द इतना होता है। लेकिन अगर कोई किसी स्त्री को संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, और वो सोचती है कि केवल मैं अगर चिल्लाऊंगी तो बच्चा होगा, क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से जब व्यक्ति को भक्ति हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम हो जाता है, तो खुद ब खुद प्रयास किए बिना ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कि कोई व्यक्ति अगर सोचेगा कि मैं केवल पहले रोऊंगा, शरीर को थरथर में कंपन कराऊंगा तो भक्ति आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको कहते हैं सहजीय, और कई बार ये कई गलत प्रकार के कार्य भी करते हैं, भगवान के रास लीला का नकल करते हैं, इस तरह से कई अनैतिक कार्य भी करते हैं भक्ति के नाम में। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद में ऐसे कई अपसंप्रदाय हुए जो ऐसे भक्ति को सहज लेते थे। तो अद्वैत आचार्य भी अच्छी तरह से जानते थे कि असली भक्त कौन है और नकली कौन है। एक शुद्ध भक्त ही पहचान सकता है कि दूसरा शुद्ध भक्त कौन है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णव की क्रिया कार्यकलाप, उनका व्यवहार, उनके सोचने का ढंग, रहन सहन का ढंग समझना मुश्किल होता है। जैसे शिवजी हैं, महान वैष्णव हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति उनको समझ नहीं पाए, कहने लगे कि अरे इसके तो गले में सांप हैं, हड्डियां हैं, और शरीर पे श्मशान का जो रज है वो उनके शरीर पे लगा हुआ है, और इधर उधर नाचते रहते हैं पागल आदमी की तरह, और अपने डमरू बजाते रहते हैं, ये क्या भक्त है? तो दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाए और उन्होंने एक भीषण वैष्णव अपराध किया। लेकिन बाकी जो शुद्ध भक्त थे वो समझ पाए थे। तो इस तरह से शुद्ध भक्तों को समझना ये बहुत कठिन होता है, और केवल एक शुद्ध भक्त समझ सकता है कि दूसरा व्यक्ति भक्त है कि नहीं है। तो अद्वैत आचार्य स्वयं शुद्ध भक्त थे, वो भी महाविष्णु के अवतार हैं, तो तुरंत पहचान पाए माधवेंद्र पुरी को, और उन्होंने उनसे दीक्षा याचना की कि मुझे आप वैष्णव दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो उस समय माधवेंद्र पुरी ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दे दी। और भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि पंचरात्र का विधि के अनुसार वास्तव में दीक्षा देने के लिए केवल गृहस्थ को अनुमति है। जो गृहस्थ ब्राह्मण होते हैं वही वास्तव में दीक्षा देते हैं। लेकिन एक ऐसे दिखने में आया कि माधवेंद्र पुरी एक सन्यासी थे और अद्वैत आचार्य एक गृहस्थ ब्राह्मण, और यहां एक सन्यासी ने एक गृहस्थ ब्राह्मण को दीक्षा दे दी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग में, वैष्णव धर्म में, जन्म का इतना महत्व नहीं होता है। कि बा विप्रा के बा न्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता श्री गुरु है। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि चाहे किवा विप्रा, विप्र मतलब ब्राह्मण, चाहे कोई ब्राह्मण हो, न्यासी या कोई सन्यासी हो, या शूद्र के ने नए, या वो शूद्र भी क्यों न हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वही गुरु बनने के लिए योग्य होता है और कोई नहीं। तो चाहे कोई शूद्र परिवार से भी जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन अगर उसके अंदर शुद्ध भक्ति है तो सारे संसार का गुरु बन सकता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं वैष्णव परंपरा में। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरीपाद ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी और फिर आगे चले, और आगे चलते चलते वो रेमुना पहुंचे। बालेश्वर ये नदी के, ये समुद्र के तट पर है और इसके पास में ही रेमुना गांव है। आप में से जो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे पिछली बार, जगन्नाथपुरी से भी छोटी यात्रा निकली थी रेमुना के लिए। ये बालेश्वर जो है कलकत्ता और पुरी के बीच में है, तो रास्ते में पड़ जाता है। तो अगली बार अगर कोई जाएंगे वहां तो अवश्य इस सुंदर खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करके आए। तो वहां जब रेमुना पहुंचे तो उन्होंने इस सुंदर विग्रह का दर्शन किया गोपीनाथ, और ऐसे भावभोर हो गए कि कीर्तन और नृत्य करने लगे। और वहां के जो पुजारी हैं उन्होंने उनको देखा कि कोई अच्छे भक्त आए हैं और सेवा करना आरंभ किया। और जब माधवेंद्र पुरी ने देखा कि यहां पर गोपीनाथ जी की इतने सुंदर ढंग से सेवा हो रही है, तुरंत देखकर उनको पता चला कि अवश्य जो गोपीनाथ जी को भोग चढ़ रहा होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है यहां पर, तो मुझे जान लेना चाहिए कि गोपीनाथ जी की सेवा कैसे हो रही है, किस प्रकार के व्यंजन पदार्थ बन रहे हैं गोपीनाथ जी की सेवा के लिए, और ताकि मैं गोपाल जी की सेवा गोवर्धन में इसी तरह से कर सकूं। तो वहां पुजारी से बात की उन्होंने और ब्राह्मण से पूछा कि किस तरह के व्यंजन आप यहां बनाते हैं, कितने समय पे, किस समय पे आप भोग चढ़ाते हैं, कैसे आप यहां व्यवस्था विधि विधान क्या है आपके मंदिर में, हम भी गोपाल जी की सेवा इसी तरह करना चाहते हैं क्योंकि आपके मंदिर में इतनी अच्छी सुविधा है भगवान की सेवा के लिए। तो ब्राह्मण ने विस्तार में उनको समझाया कि किस तरह से वहां गोपीनाथ जी की सेवा हो रही थी, और अंत में उन्होंने कहा सेवा तो बहुत होती है यहां, लेकिन गोपीनाथ मंदिर की विशेष सेवा है खीर। जो खीर भगवान को भोग चढ़ता है यहां पर, यह विश्व भर में प्रसिद्ध है, यह अमृत के समान है, इसलिए इसे अमृत केली कहते हैं। और यहां जैसे खीर भोग बनता है और भोग चढ़ता है, विश्व भर में कहीं नहीं ऐसे खीर पाओगे आप, और इसलिए ये खीर खाना बहुत अनिवार्य है। इसलिए बाद में माधवेंद्र पुरी को उन्होंने बाद में जाकर खीर भी खिलाया, लेकिन उसके पहले माधवेंद्र पुरी ने अपने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना मैं ये खीर को एक बार चख लूं, ताकि मैं समझ लूं कि कैसे बनाया हुआ है, ताकि गोपाल जी के लिए भी मैं ऐसे ही खीर बनाऊं। उन्होंने उनका विचार जब मन में आया तो ठीक उसी समय पुजारी अंदर जो थे भगवान की सेवा कर रहे थे, उन्होंने खीर की कटोरी लाकर भगवान के सामने रखी। अभी आप जानते हैं कि भगवान को जब भोग चढ़ाया जाता है तो उस समय किसी और व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए, उस भोग को केवल भगवान को देखना चाहिए। अगर कोई और व्यक्ति देख लेता है, और खास करके खीर जैसा पदार्थ या सुंदर सुंदर जो व्यंजन बने हैं, तो मन में क्या विचार आता है, जब सामने स्वादिष्ट व्यंजन आप देखेंगे तो क्या विचार आएगा मन में, हम भी खाएं, हम भी चख लें। एक बार किसी के मन में यह विचार आया भोग चढ़ने के पहले कि मुझे ये खाना चाहिए, तो एक अपराध सा माना जाता है, उतना ठीक नहीं है, एक दूषित जैसा हो जाता है वो। इसलिए भगवान को भोग चढ़ाते समय जब ले थाली वगैरह जब ली जाती है तो उसको ढक के लिया जाता है, ताकि दूसरे कोई देखे नहीं उसको। इसलिए भगवान के रसोई घर में सबको प्रवेश मना है, केवल जो पुजारी हैं वही केवल वहां रह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग आएंगे देखेंगे, अरे वाह समोसा बना है, रसगुल्ला बना है, मन ही मन में तो विचार आएगा कि चलो खा ले, तो ठीक नहीं रहता वो। इसलिए केवल पुजारी जो कुकिंग कर रहे हैं, जो रसोई कर रहे हैं, वो उन्हीं को रहना चाहिए और बाकी ढककर फिर सिंहासन तक लाना चाहिए। लेकिन सिंहासन पर जब लाते हैं तो फिर कपड़ा निकाला जाता है। तो जिस समय ये पुजारी माधवेंद्रपुरी को वर्णन दे रहे थे उस खीर के बारे में, ठीक उसी समय वो खीर गोपाल जी के सामने रखी गई और उस समय कपड़ा उतार दिया गया। तो जब माधवेंद्रपुरी ने ये खीर देखी तो सोचा कि एक थोड़ा सा मैं पूछूंगा नहीं किसी को, लेकिन बिन पूछे अगर किसी ने मुझे आके दे दिया ये खीर तो मैं इसको चख लूंगा, ताकि मैं जान लूं कि गोपाल जी के लिए मैं ऐसे ही खीर कैसे बना सकता हूं। अभी ये हमें याद रखना चाहिए कि माधवेंद्रपुरी भगवान के शुद्ध भक्त थे, पूरी तरह से इंद्रियों पर काबू कर लिया था उन्होंने, क्षुद्ध तृष्णा अर्थात प्यास और भूख को जीत लिया था। तो वो जो अभी सोच रहे थे कि मुझे खीर चखना है, वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सोच नहीं रहे थे, वो केवल इसलिए सोच रहे थे कि गोपाल जी के लिए कैसे खीर बनाऊं ये जानने के लिए मुझे चखना चाहिए। अगर हम भगवान के भोग को चखने की इच्छा रखते हैं तो इस इच्छा से रखते हैं कि हमारी इंद्रियों को तृप्त करें, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने ऐसे नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी जैसे ही उनके मन में यह विचार आया, तुरंत उनको समझ में आया कि अरे मैंने क्या कर दिया। हालांकि वो अपराध नहीं था, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए ही वो चखना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत बुरा लगा और तुरंत विष्णु का स्मरण करने लगे। और विष्णु का स्मरण करते करते वहां आरती भी समाप्त हो गई, क्योंकि भोग चढ़ाने के बाद में तुरंत आरती होना चाहिए, तो आरती समाप्त हो गई और माधवेंद्रपुरी ने चुपचाप भगवान को दंडवत किया और किसी से कुछ न कहते हुए बाहर चले गए, क्योंकि वो बहुत बुरा लगा था कि मैंने अपराध किया है भगवान के प्रति। जो भगवान को भोग चढ़ना था, भगवान के चखने के पहले मैंने ही इसे चखने की इच्छा रखी, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी वहां से चुपचाप चले गए। एक खाली जो बाजार था उस बाजार में जाके वहां बैठ गए चुपचाप अकेले और नाम जप करते रहे। उधर गोपीनाथ जी के मंदिर में पुजारी सेवा कर रहे थे, भगवान को विश्राम करा दिया और पुजारी सो गए। अभी उस पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और कहने लगे, हे पुजारी उठो, वहां बाजार में मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी बैठे हैं, खाली बाजार में अकेले जप करते हुए बैठे हैं, मैंने उनके लिए एक खीर की कटोरी चुरा के रखी है, वो मेरे पीछे जो पर्दा है उस पर्दे के पीछे एक कटोरी है, जाके देखो, मेरे माया जाल की वजह से तुमने ये देखा नहीं, इसलिए जल्दी से उठो और पर्दे के पीछे ढूंढो, वो कटोरी तुम्हें मिल जाएगी, कटोरी ले लो, बाजार में जाओ, माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी को ढूंढो और ये उनके हवाले कर दो। तो पुजारी एक स्वप्न से जागे, निद्रा से जागे, सोचने लगे कि अरे ये क्या स्वप्न आया। तो तुरंत स्नान किया, स्नान करके वो पुजारी सिंहासन पर आए, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो स्नान करके आना चाहिए। तो हालांकि बीच रात थी, फिर भी वो स्नान करके आए, क्योंकि भगवान का आदेश था कि मेरे पीछे जो पर्दा है उसके पीछे क्या है देखो। तो इस तरह से पुजारी जी अंदर गया, पर्दा पीछे किया, देखा कि वाकई जैसे भगवान ने कहा था वहां खीर की कटोरी पड़ी है। आश्चर्यचकित हो गए और फिर उसी कटोरी को लेकर तुरंत बाजार में गए। माधवेंद्रपुरी नाम के कोई सन्यासी यहां बैठे हैं क्या? आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की है। तो वास्तव में गोपीनाथ जी या गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण वो भी चोरी करते हैं कभी कभी, लेकिन उनकी चोरी में और हमारी चोरी में बहुत अंतर होता है। वो जिस प्रकार की चोरी भी करते हैं उनका गुणगान करते हैं हम, उनके भक्त। जैसे वृंदावन में भी वो माखन चोरी करते थे तो माखन चोर के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, और वो ऋण को छोड़कर जाते थे तो रण छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम रण को छोड़ के जाएंगे तो हम कायर कहलाएंगे, हम किसी घर में जाके अमूल बटर चोरी करेंगे तो हम पुलिस हमें दंड देगा, लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो वो उनकी वो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनका यश बढ़ जाता है, भक्त उनका अधिक गुणगान करते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। यहां भक्त वत्सलता वत्सल की जो के गुण है उन्होंने प्रकट किए। अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए उन्होंने खीर चोरी की, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के हृदय में इच्छा थी कि मैं एक बार चखूं, और वो चख नहीं पाए थे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, श्री कृष्ण तो सबके हृदय में है, विराजमान है, और जानते थे कि माधवेंद्रपुरी की इच्छा क्या थी, और ये इच्छा अतृप्त थी। तो जब माधवेंद्रपुरी सामने नहीं आए खीर लेने के लिए, तो खीर देने के लिए गोपीनाथ जी सामने आए, और उन्होंने चोरी करके जब दी, तो फिर ये पुजारी जोर जोर से बोलने लगे, कहां है वो व्यक्ति जिनका नाम माधवेंद्रपुरी है, सामने आ जाएं, आप ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, कहां हैं आप? तो ऐसे हर एक दुकान के पीछे पीछे इधर उधर बाजार में घूमते फिरे, रात में, बीच रात में, अंधकार में। और फिर माधवेंद्रपुरी ने यह पुकार सुनी और बाहर आए कि हाँ, मैं माधवेंद्रपुरी हूं, क्या बात है? तो उन्होंने पूरे विस्तार में उनको बताया कि क्या हुआ। तो माधवेंद्रपुरी को जब पता चला तो प्रेमावेश में वो भगवान का स्मरण करते रहे और कीर्तन करते रहे। फिर उन्होंने उस खीर को चखा, लेकिन जब उस पुजारी ने देखा कि वास्तव में इनके लक्षण, भक्ति के लक्षण क्या हैं, तब उनको समझ में आया कि वास्तव में ये गोपीनाथ जी के कृपा के लिए बिल्कुल योग्य थे। गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर चोरी की है, जो पैसे कभी करते नहीं है, लेकिन ऐसे भक्त के लिए जैसे माधवेंद्रपुरी हैं, इनके भक्ति के लक्षण देखकर पुजारी को समझ में आया कि गोपीनाथ जी ने ऐसे क्यों किया है। ये पुजारी भी वास्तव में एक शुद्ध भक्त थे। अगर ऐसे शुद्ध भक्त नहीं होते तो किस तरह से गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आते और ऐसा उनको एक व्यक्तिगत आदेश देते कि तुम जाओ फलाना फलान व्यक्ति को ढूंढ लो और उनको खीर दे दो। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि माधवेंद्रपुरी और ये पुजारी दोनों शुद्ध भक्त थे, क्योंकि दोनों के स्वप्न में कृष्ण आए और दोनों को उन्होंने व्यक्तिगत आदेश दिया था। लेकिन फिर भी जब ये ब्राह्मण ने माधवेंद्रपुरी का दर्शन किया पहली बार बाजार में, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। वैसे ब्राह्मण जो होते हैं वो समाज के श्रेष्ठ वर्ग माने जाते हैं, तो उनको किसी और को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन जब इस ब्राह्मण ने माधवेंद्रपुरी को देखा तो उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम कर डाला। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मणों से भी परे होते हैं, और जब कोई तथाकथित ब्राह्मण भी एक वैष्णव को देखता है तो उसे प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से वैष्णव ही थे नहीं, लेकिन जब उस पुजारी ने उनके लक्षण देखे तब उनको पता चला कि वास्तव में ये योग्य व्यक्ति है। तो इसके बाद में पुजारी चले गए वापस, और माधवेंद्रपुरी ने उस खीर का सेवन किया, अमृत केली, अमृत बिल्कुल अमृत ही था वो, और बड़े आनंद में उस खीर का सेवन किया। और फिर उस मिट्टी के छोटे से कुल्हड़ को, कटोरी को उन्होंने तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अपने पास जो छोटा सा कपड़ा था उस कपड़े में उन्होंने उस मिट्टी के टुकड़ों को रख दिया, और हर रोज उस कटोरी का, उस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा कणव लेते थे, खाते थे। जैसे ब्रह्मांड घाट वृंदावन में है, जहां भगवान के ऊपर आरोप लगाया गया था, बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों ने आरोप लगाया था भगवान के ऊपर, माता यशोदा के पास शिकायत लेकर गए थे। क्या शिकायत थी? कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो आज भी जो भक्त ब्रह्मांड घाट में जाते हैं, ब्रह्मांड घाट की मिट्टी लेकर वो खाते हैं थोड़ा कुछ, और अपने साथ में रखते हैं, और हर दिन थोड़ा थोड़ा मिट्टी उसका खा लेते हैं। और ये जो कटोरी थी ये खुद गोपीनाथ जी ने चोरी की थी, तो उनके शरीर का स्पर्श तो हुआ होगा, तो इसलिए ये बहुत विशेष कटोरी है। इसलिए उन्होंने हर रोज थोड़ा उस कटोरी की जो मिट्टी है वो चखते रहे हर दिन। इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अभी ये पुजारी तो बात फैलाएंगे सब जगह, कि ये देखो इतने महान भक्त हैं कि गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर चोरी की है, और जब लोगों को पता चलेगा तो सब ढेर सारे लोग आएंगे मेरे पास में और मेरा गुणगान करेंगे, मेरे पैर पड़ेंगे, तो इसलिए मुझे यहां से निकल पड़ना अच्छा है, क्योंकि रहूंगा तो मेरी प्रसिद्धि होगी। तो देखिए माधवेंद्रपुरी के गुण। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रसिद्धि नहीं चाहता, जो ये नहीं चाहता कि मेरा गुणगान हो, जो समाज के लोग मेरे सामने आए, मुझे आदर सत्कार करे, मेरा सम्मान करे, हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इस प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझते हैं, मल के समान समझते हैं, क्योंकि इतना तुच्छ है। जो व्यक्ति ऐसे लाभ प्रतिष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागता है वो तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो संसार के स्थूल चीजों को त्यागते तो है ही, जैसे लाभ धन, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें हैं पूजा प्रतिष्ठा, इसको भी त्यागते हैं, इसको तुच्छ समझते हैं। और ये माधवेंद्रपुरी की जीवनी से हम समझ सकते हैं उनको कितना अच्छा अवसर था लोगों को पूजा स्वीकार करने के लिए, लोगों के मन में पूजनीय माने जाने के लिए, उनकी कितनी प्रसिद्धि हो सकती थी, कितना गुणगान हो सकता था उनका। केवल एक जगह बैठे रहते तो हजारों की संख्या में लोग उनके आके पैर पड़ जाते, उनको इतना ऊंचा पद दिया जाता जिसके लिए भले वो योग्य थे भी, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि जितना मैं यहां रहूंगा मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुच्छ चीज है। तो वहां से तुरंत रात के रात में ही निकल पड़े, किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान अपने भक्त को छोड़ते नहीं है, भगवान अपने भक्त का गुणगान करना चाहते हैं, भले भक्त खुद का गुणगान सुनना न चाहे या ये भी नहीं चाहता कि दूसरे अपना गुणगान करें, लेकिन भगवान चाहते हैं। जो भगवान चाहते हैं वो तो होना ही है। तो भगवान चाहते थे, गोपीनाथ जी चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी का गुणगान होना ही होना है। माधवेंद्रपुरी नहीं चाहते थे लेकिन गोपीनाथ जी चाहते थे, तो जो गोपीनाथ जी ये चाहते थे वो होना था। इसलिए जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उनकी प्रसिद्धि उनके आगे ही जगन्नाथपुरी में पहुंच चुकी थी। तो जैसे वो जगन्नाथपुरी में आए तो सब लोग उनका आदर सत्कार करने लगे, अरे गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर चोरी की है। तो ये जब देखा माधवेंद्रपुरी ने, उन्होंने सोचा कि यहां से भी अभी मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि गोपाल जी ने मुझे आदेश दिया था, मुझे यहां से चंदन और कर्पूर ले आना है, और अगर मैं यहां से निकल पड़ा तो फिर चंदन कर्पूर कैसे ले जाऊंगा, गोपाल जी का आदेश मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो फिर वो रहे जगन्नाथपुरी में, और रहकर उन्होंने जो गोपीनाथ जी, जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, उनसे उन्होंने कहा कि गोपाल जी की सेवा के लिए मैं यहां से चंदन और कर्पूर ले जाना चाहता हूं। जब जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने देखा माधवेंद्रपुरी की भक्ति क्या है, किस तरह से वो कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उनके भाव क्या थे, वो भी पहचान पाए कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने अपनी इच्छा प्रकट की उनके सामने, तो तुरंत वो तैयार हुए और वो कहने लगे कि हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। और उन्होंने जाके सरकार के अधिकारियों से, राजा के अधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि उस समय जगन्नाथ मंदिर में भी मलय चंदन और कर्पूर की सेवा चलती थी। भगवान जगन्नाथ जी को लेप लगता था कभी कभी चंदन का, मलय चंदन का, और कर्पूर भी उनको अर्पण किया जाता था। तो ये इसका जो नियंत्रण है वो सरकार करती थी स्टॉक का, ऐसा नहीं कि कोई भी आके जितना भी जितना जहां भी चाहे ले जाए। तो इन भक्तों ने, जगन्नाथ जी के सेवकों ने सरकार के अधिकारी व्यक्तियों से चर्चा कर ली, और इनके लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए, उन्होंने कर्पूर और चंदन की व्यवस्था कर दी। कितना चंदन? एक माउंड अर्थात 82 पाउंड इतना चंदन, और कर्पूर 20 तोला इसकी व्यवस्था कर दी। साथ साथ में एक ब्राह्मण और एक सेवक साथ में उनके दिए, ठीक है आप इन दोनों को साथ में ले जाइए, क्योंकि अकेला इतना सब चंदन ले जाना आपके लिए संभव नहीं होगा, तो तीन जनों के बीच में ये हो सकता है। और साथ में उनको खर्चे के लिए पैसे भी दिए, और रास्ते में जो चेक नाका वगैरह आते हैं टोल ऑक्ट्रॉय कर भरने के लिए जो जगह होते हैं, वहां हर पल पे कोई न कोई अधिकारी व्यक्ति होते हैं जो कर लेने के लिए देखते हैं, तो उन्होंने सरकार से कागजात भी बना लिए पास कि ताकि उनको कोई कष्ट न हो, क्योंकि उस समय रास्ते में बहुत मुसलमान राजाओं के सैनिक रहते थे और वो बहुत कष्ट देते थे, तकलीफ देते थे लोगों को, जो भी यात्री थे उनको तकलीफ देते थे, तो उन्होंने कागजात वगैरह सब बना लिए ताकि उनको कोई तकलीफ न हो। इस तरह से माधवेंद्रपुरी चल पड़े फिर से, और चल पड़े जगन्नाथपुरी से, तो रास्ते में वृंदावन की ओर जब जा रहे थे तो रेमुना में फिर से आए, और इस बार रेमुना में फिर से रुके। जब पुजारी ने देखा गोपीनाथ जी की माधवेंद्रपुरी फिर से आए हैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई उनको, उन्होंने अच्छी तरह से सेवा की माधवेंद्रपुरी की, उनको खीर खिलाया और रात में वहां विश्राम किया माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी के मंदिर में, जिनका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ, जिन्होंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी की थी। तो रात में फिर से गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए। देखिए तीसरी बार, पहली बार गोवर्धन में स्वप्न में आए थे कि मैं झाड़ियों में छुपा हूं मुझे निकाल लो, दूसरी बार 2 साल बाद में उन्होंने कहा कि मेरा शरीर गर्म है मलय चंदन ले आओ जगन्नाथपुरी से, दूसरी बार, और ये तीसरी बार गोपीनाथ जी के मंदिर में गोपाल जी उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि जो चंदन और कर्पूर तुम लाए हो वो वहीं पर रेमुना में गोपीनाथ जी की सेवा में लगाओ, कर्पूर और चंदन को मिलाओ और घिस के फिर उसे गोपीनाथ जी के शरीर में लेप लगाओ, मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए गोपीनाथ के शरीर में तुम लगाओगे तो वो ठंडक मेरे शरीर में भी आ जाएगी, क्योंकि हम दोनों एक हैं। तो गोपीनाथ जी की कृपा देखिए, वो जानते थे कि माधवेंद्रपुरी को बहुत कष्ट होगा, इतना दूर इतना सब चंदन ले आना 82 पाउंड काफी वजन हो जाता है, तो इतना सब ले आना और खतरा कितना, रास्ते में डकैत होते हैं, रास्ते में मुसलमानों के जो अधिकारी सैनिक होते हैं वो रोकने वाले हैं, तो उनको कृपा हुई माधवेंद्रपुरी के ऊपर और उन्होंने कहा कि नहीं लाने की जरूरत नहीं है, मुझे चंदन मिल गया है, यही गोपीनाथ जी को आप लेप लगाओ। तो जब जाके माधवेंद्रपुरी फिर से आश्चर्यचकित हुए कि फिर से गोपाल जी मेरे स्वप्न में आए, मुझे आदेश दिया, तो तुरंत उन्होंने गोपीनाथ जी के सेवकों को बुलाया और कहने लगे कि गोपाल जी का आदेश है कि ये सारा चंदन और कर्पूर जो है ये गोपीनाथ जी की सेवा में ही इस्तेमाल होना चाहिए, तो आइए हम सब तैयारी करते हैं चंदन घिसने के लिए ताकि हम गोपीनाथ जी के शरीर पर लेप लगाएं। तो इस तरह से गोपीनाथ जी के सेवक भी बड़े खुश हो गए और माधवेंद्रपुरी ने कहा मेरे साथ में जो 2 सेवक हैं इनको भी आप ले लो, और 2 सेवक लेते हैं और आप 2 सेवक की व्यवस्था करो, मैं इनकी तनख्वाह दे देता हूं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में उनको पैसे भी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि और 2 सेवक मैं रख लेता हूं, तो ये हर रोज गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगना चाहिए। तो चंदन घिसने का काम आरंभ हुआ, साथ साथ कर्पूर भी मिला लेते थे, चंदन और कर्पूर के मिश्रण से हर रोज गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगता था गर्मी तक। तो गर्मी समाप्त होने तक माधवेंद्रपुरी वहीं पर रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में रहे, बहुत आनंद से देखते रहे कि कितने सुंदर ढंग से गोपीनाथ जी की सेवा हो रही है। जब गर्मी का मौसम समाप्त हो गया तो माधवेंद्रपुरी चातुर्मास के लिए जगन्नाथपुरी में गए और वहां जगन्नाथ जी के सामने हर रोज आके नृत्य और कीर्तन करते थे, जैसे कि आगे चल के चैतन्य महाप्रभु करने वाले थे, उसी तरह से माधवेंद्रपुरी भी जाकर वहां जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे, रोज दर्शन करते थे और अपना हरि नाम लेते रहते थे। और इस तरह से जब समय पूरा हो गया तो फिर वो लौटकर फिर से गोवर्धन चले गए। तो इस तरह से ये सुंदर लीला जो खीर चोरा गोपीनाथ की हुई, और यही कहानी चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे अपने भक्तों को। और ये कहानी शेष समाप्त करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का गुणगान करना आरंभ किया। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा कि माधवेंद्रपुरी जितना भाग्यशाली व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में कोई हो सकता है? इतने महान भक्त, सबसे पहले तो स्वयं श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और उनको दूध पिलाया जब वो भूखे थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अयाचित वृत्ति या अजगर वृत्ति का पालन करते थे। अयाचित वृत्ति मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी को जाके पूछते नहीं थे। दो प्रकार के साधु होते हैं या दो प्रकार के यति सन्यासी होते हैं। एक को बोलते हैं भिक्षु, जो भिक्षु वृत्ति का पालन करता है, जो जाके भिक्षा मांगता है, इसको माधुकरी भी कहते हैं। माधुकरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मधु जैसे मधुमक्खी होती है, हर जगह जाके थोड़ा थोड़ा, हर एक फूल में जाके थोड़ा सा अमृत का पान करती है, यहां से थोड़ा, यहां से थोड़ा, यहां से थोड़ा। तो इसी तरह से जो मधुमक्खी की तरह जाके भिक्षा मांगता है, थोड़ा एक रोटी इधर, थोड़ा सब्जी इधर, इधर थोड़ा दाल इधर, थोड़ा चावल इधर, ऐसे जो करता है उसको माधुकरी कहते हैं। वृंदावन में ऐसे बाबा जी जो होते हैं वो माधुकरी करते हैं, तो इसको भिक्षु वृत्ति कहते हैं, माधुकरी। लेकिन और एक भी प्रकार के सन्यासी होते हैं, यति होते हैं, जो अयाचित वृत्ति का पालन करते हैं। अयाचित वृत्ति मतलब भिक्षा नहीं मांगते, किसी के पास जाते नहीं है कुछ भोजन के लिए। अगर भोजन आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। इसलिए इस अयाचित वृत्ति को अजगर वृत्ति भी कहते हैं। अजगर मतलब पाइथन, जो बड़ा सांप होता है। वो सांप क्या करता है? केवल अपना मुंह खोल के बैठ जाता है एक जगह चुपचाप। अगर मुंह में कोई पशु आ जाता है, मुंह बंद कर लेता है, खा लेता है, नहीं आता है तो बैठ जाता है मुंह खोल के। कृष्ण लीला में भी एक ऐसे ही सांप थे, विशाल सांप, कंस का साथी था, और उसने अपना वेश बदल के एक पाइथन या अजगर का उसने रूप धारण किया था। उसका क्या नाम था? अघासुर। और उसके मुख में कृष्ण और ग्वाल बाल सब चले गए थे। और ये भी एक सुंदर लीला है। तो खैर, ये अजगर वृत्ति, अयाचित वृत्ति का पालन माधवेंद्रपुरी करते थे। इसलिए जब वो गोविंद कुंड में बैठे थे तो खुद वो जाके किसी को उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन गोपाल जी खुद आए उनको दूध पिलाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे थे कि कितने भाग्यशाली है माधवेंद्रपुरी कि गोपाल जी स्वयं उनके पास आए, प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट होकर उनको दूध पिलाया अपने हाथों से। और उनके स्वप्न में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार गोपाल जी आए, और तीन बार आकर उन्होंने आदेश दिया उनको। और इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान जानते थे कि माधवेंद्रपुरी कितने शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए वो खुद गोपाल जी के रूप में प्रकट हुए, और वो विग्रह को उन्होंने प्रकट कराया। तो इस तरह से अन्नकूट का महोत्सव कराया माधवेंद्रपुरी ने। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने चाहा कि माधवेंद्रपुरी की परीक्षा लें, ताकि सारे दुनिया को समझ पाए कि माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त हैं। इसलिए उन्होंने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि आप चंदन ले आओ मेरे लिए, ताकि लोग समझे कि माधवेंद्रपुरी भगवान की सेवा के लिए, अपने ऊपर कष्ट लेने के लिए कितने तैयार थे, आतुर थे, हिचकिचाए नहीं, अपनी असुविधा सुविधा को देखा नहीं, सीधे चले गए। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आगे कहने लगे कि देखो किस तरह से गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी किया। भगवान चोर बने केवल अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने भक्त की सेवा करने के लिए। तो खीर चोरा गोपीनाथ, उसी मंदिर में वो बैठे थे चैतन्य महाप्रभु, और फिर केवल माधवेंद्रपुरी की सुरक्षा के लिए उन्होंने बाद में उनसे कहा कि सारा चंदन वगैरह जो है ये वृंदावन तक न ले आना, केवल गोपीनाथ जी के शरीर में लगाना, रेमुना में ही इस चंदन को समाप्त कर देना और मैं इसे स्वीकार कर दूंगा। तो ये है गोपाल जी की कृपा माधवेंद्रपुरी के ऊपर, और माधवेंद्रपुरी ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना कष्ट लिया उन्होंने, इतना भारी वजन उठाकर भी ले जाने के लिए तैयार थे, इतना खतरा था, मुसलमान सैनिक वहां रास्ते में थे, डकैत थे, वो हिचकिचाए नहीं। ये है माधवेंद्रपुरी की महिमा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी का गुणगान करने लगे और फिर उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, जिस श्लोक को माधवेंद्रपुरी बार बार बोलते रहते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये श्लोक चांद की तरह है, और जिस तरह से चांद सारे ब्रह्मांड भर में रोशनी फैलाता है, उसी तरह से ये एक सुंदर श्लोक जो है ये सब जगह रोशनी फैलाती है और हमारे जीवन में जो अंधकार है उस पर रोशनी देती है। और आगे वो वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस एक श्लोक के बारे में। वो कहते हैं कि जिस तरह से रत्नों में कौस्तुभ मणि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह से जो रस काव्यों में या भक्ति रस के जो श्लोक होते हैं या जो कविताएं होते हैं, इनमें से ये श्लोक प्रमुख है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया जो कि माधवेंद्रपुरी किया करते थे। अहि दीन दयार्थ नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वद अलोक कातरम दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। ये श्लोक का उच्चारण करते रहे चैतन्य महाप्रभु, बार बार उच्चारण करते रहे। इसका मतलब क्या है कि भक्त माधवेंद्रपुरी पुकार रहे हैं, हे दीन दयार्द्र नाथ हे, हे दीनों के नाथ, हे वो व्यक्ति जो दीनों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, हे मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से मैं कब आपका दर्शन कर पाऊंगा। हृदयम त्वद अलोक कातरम, हृदयम मेरा जो हृदय है, त्वद आपका, अलोक्य से मतलब आपका दर्शन न करते हुए कातरम बड़ा दुखी है। जब से मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है तब से मेरा हृदय बहुत पीड़ित है। हृदयम त्वद अलोक कातरम दयित भ्राम्यति, हे प्रिय मेरे भगवान किम करोम्य हम, अब ऐसी अवस्था में मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। तो ये वो प्रसिद्ध श्लोक है जिसका गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने इतने शब्दों में किया। तो वास्तव में ये श्लोक बहुत गहरा है, समझाया जाता है, प्रभुपाद जी भी समझाते हैं तात्पर्य में कि ये श्लोक वास्तव में सबसे पहले श्रीमती राधा रानी ने कहा था। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे उस समय की बात है, और उसके बाद में जब उद्धव आए थे तो जिस भावना में श्रीमती राधा रानी उद्धव के सामने आई थी, उस भावना में ये श्लोक का उच्चारण राधा रानी ने किया था। और क्योंकि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे, इसलिए राधा रानी उनको मथुरा नाथ इस नाम से संबोधित कर रहे थे। और जो श्रीमती राधा रानी और गोपियों का भाव था वो विरह का भाव था कि भगवान हमको छोड़कर चले गए हैं। भगवान के प्रेमा भक्ति में दो प्रकार के भाव होते हैं, एक को कहते हैं संभोग, दूसरे को कहते हैं विप्रलंभ। भगवान का मिलन जब होता है भक्त के साथ में, और जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, जो सेवा होती है, उसको संभोग कहते हैं। मिलन में जो सेवा होती है उसको संभोग कहते हैं। वो तो शुद्ध प्रेम है ही, लेकिन जो सेवा, जो प्रेम भगवान के विरह में होती है, उस प्रेम को, उस सेवा को विप्रलंभ कहलाया जाता है। और ये विप्रलंभ सेवा जो है ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि ऐसा प्रेम जो है विप्रलंभ प्रेम और भी गाढ़ होता है, और भी तीव्र होता है, मिलन के प्रेम से भी अधिक होता है। इस तरह से गोपियां और जो ब्रजवासियां थे, जब कृष्ण वहां से चले गए, वो विप्रलंब भाव में भगवान का स्मरण करते थे, उनसे उनकी सेवा करते थे, क्योंकि कृष्ण वहां उस समय थे नहीं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में थे। तो इस तरह से राधा रानी भी विप्रलंब सेवा में ये श्लोक बोल रही थी। मथुरा में गए थे तो मथुरा नाथ बन गए, और क्योंकि कृष्ण छोड़ के चले गए हैं, तो ऐसे भावना में भक्त अपने आप को दीन समझता है, दुखी समझता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने कहा, अई दीन दयार्द्र नाथ है, दीनों के स्वामी, दुखी लोगों के स्वामी मथुरा नाथ। और ऐसे विप्रलंब भाव में वो प्रार्थना कर रहे थे कि मैं कब आपका दर्शन कर सकूंगी फिर से। सारे ब्रजवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि मैं कब आपको फिर से देख सकूं। और ऐसे निस्सहाय भाव में वो सोचते हैं कि मैं अब क्या करूं, मेरा अब क्या होगा। तो ये एक भावना है। और इनके पद चिन्हों में ही चले चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि आखिर चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके वही श्री कृष्ण आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही भाव प्रकट किए। और फिर चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में छह गोस्वामी आए। इसलिए छह गोस्वामियों के बारे में बताया जाता है कि वो हमेशा इधर उधर भ्रमण करते थे वृंदावन में, और क्या कहते थे, हे राधे व्रज देव के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन पाद कल्प तले गोविंद गानामृतये। वो कहते हैं कि जो छह गोस्वामी हैं, वो हर जगह घूमते फिरते थे। हे राधे व्रज देव के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, कि हे नंद सुना, हे नंद के पुत, हे कृष्ण आप कहाँ हैं? हे राधे, हे व्रज देव के आप कहाँ हैं? आप क्या गोवर्धन में हैं? आप क्या कल्प वृक्ष के तल में बैठे हैं? कहाँ हैं आप? तो ये जो कृष्ण को ढूंढने की भावना है कि कहाँ है कृष्ण, ये विप्रलंब की भावना है। तो ब्रजवासियों की भावना ये थी वृंदावन, कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद में। और सारे ब्रजवासियों में से सबसे तीव्र विरह की भावना गोपियों की थी, और गोपियों में से भी सबसे तीव्र भावना राधे रानी की थी। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये जो अई दीन दयार्द नाथ है, ये श्लोक है जिसका उच्चारण माधवेंद्रपुरी हमेशा किया करते थे, वो पहले श्रीमती राधा रानी कहा था। और इस श्लोक को केवल चैतन्य महाप्रभु समझ सकते थे, कोई चौथा आदमी नहीं समझ सकता था। अभी देखिए, ये श्लोक कहा था राधा रानी ने, तो खुद तो समझ रही थी राधा रानी की वो क्या बोल रही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु समझते थे, तो दो हो गए। और फिर आगे चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कोई चौथा आदमी नहीं समझता है, तो तीसरा कौन फिर? माधवेंद्रपुरी। इसका मतलब है कि इस श्लोक का तात्पर्य समझने वाले वास्तव में केवल तीन व्यक्ति हैं, वह है श्रीमती राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी। तो अब हम समझ सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी वास्तव में कितने महान भक्त हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का बारंबार उच्चारण करके आस्वादन किया, और जैसे ही उन्होंने ये श्लोक कहा तो भाव विभोर हो गए और प्रेमावेश में कूदने लगे, नृत्य करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे, और उनके शरीर में अष्ट सात्विक का विकार प्रकट होने लगे। शरीर में कंपन, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों से अश्रुधारा बहना, स्तब्ध हो जाना, वैवर्ण्य सब भूल जाना, ये सारे लक्षण प्रकट होने लगे उनके शरीर में। और वहां गोपीनाथ जी के पुजारियों ने उनको देखा, वहां लोग भी एकत्र हुए थे, तो चैतन्य महाप्रभु अई दीन अई दीन अई दीन ऐसा कहते कहते कीर्तन करते रहे, क्योंकि अई दीन से आगे वो बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि इतना भाव विभोर हो गए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतने सारे लोग हैं, तो अपने आप को संभाल लिया उन्होंने, संभल गए और फिर शांत हो गए। और उस समय गोपीनाथ जी के पुजारियों ने उनके सामने 12 के 12 जो कटोरी खीर के चढ़े जाते भोग चढ़ाए जाते थे गोपीनाथ जी के सामने, 12 के 12 कटोरी लाके सामने रख दिए। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने के साथ में कितने भक्त थे? 4, और वो 5वें। तो उन्होंने केवल 5 कटोरी रख दिए और 7 वापस कर दिए पुजारी को, और फिर 5वें में बैठकर वहां खीर का सेवन किया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी, गोपीनाथ जी, खीर चोरा गोपीनाथ जी और माधवेंद्रपुरी, इन तीनों का के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया और इस तरह से इन सुंदर लीलाओं का आस्वादन किया उन्होंने और दिव्य आनंद की अनुभूति की। तो ये कहानी सबसे पहले ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को सुनाई, फिर चैतन्य महाप्रभु ने इन 4 भक्तों को सुनाया, और आगे चल के जब बंगाल के भक्त चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने हेतु जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे तो फिर से वो रेमुना रुके थे, और उस समय नित्यानंद प्रभु ने सारे बंगाल के वैष्णव भक्तों को ये कहानी फिर से सुनाई थी, माधवेंद्रपुरी की कहानी, खीर चोरा गोपीनाथ की कहानी, गोपाल जी की कहानी। तो इस तरह से ये कहानी भक्तों को बहुत प्रिय है इसलिए, और सुनने के लिए भी बहुत अच्छा है, सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद है कि जो इस कथा को हृदय से सुनते हैं बिना सोए हुए क्लास में, वो हमारा तात्पर्य है ब्रैकेट में, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो इस कथा का श्रवण भक्ति भाव से करते हैं उनको शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें इस लीला का श्रवण कीर्तन करना है और चिंतन मनन भी करना चाहिए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु फिर रेमुना को छोड़कर आगे जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। इस तरह ये समाप्त हुई चैतन्य महाप्रभु की हुई घटना खीर चोरा गोपीनाथ जी की और गोपाल जी की। और आगे बहुत सुनना है माधवेंद्रपुरी के बारे में, लेकिन वो कल और परसों 2 दिन और उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे। माधवेंद्रपुरी पाद की जय। कोई प्रश्न कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मणों को नहीं कर सकते। 4 वर्णों में से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आश्रमों में से सन्यासी श्रेष्ठ हैं। तो ब्राह्मण सन्यासी को भी देते हैं, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति के सामने ऐसे ब्राह्मण दंडवत नहीं करते हैं। आजकल तो खैर ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रथा थी। लेकिन वैष्णव के सामने जब उन्होंने देखा कि वैष्णव इतना महान है, तो हालांकि वो पुजारी खुद शुद्ध भक्त थे गोपीनाथ जी के, फिर भी उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम किया और ऐसे सम्मानित किया माधवेंद्रपुरी को। ठीक है, सन्यासी के सामने सभी को प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो।
तो सजीव भाव में भक्ति करते हैं, वो ड्रामा करते हैं, लेकिन क्या उनको थोड़ी भी प्राप्ति नहीं होती भगवान की?
सहजीय जो होते हैं उनको बहुत कठिन होता है भक्ति प्राप्त करना, खास करके वो सहजीय जो अनैतिक कार्य करते हैं। जो भले अनैतिक कार्य न कर रहे हो लेकिन केवल दिखावा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, उनको ज्यादा प्रगति नहीं होगी। कई ऐसे संस्थाएं हैं, तथाकथित गुरु भी हैं, जो शुरू से रोना ही सिखाते हैं। हमारे एक भक्त एक ऐसे कथाकार के पास गए थे, वो गुरु उनके कई शिष्य हैं, काफी प्रसिद्ध हैं वो उत्तर भारत में, उड़ीसा में उनके काफी अनुयायी हैं। तो उनके प्रवचन भी बड़े ऐसे टाइप के होते हैं, बहुत ऊंचे बातें भक्ति की होती हैं। और जब वो गए तो उन्होंने देखा कि साधारण लोग सबसे पहले उनको सबको रुलाते हैं, सब लोग, उस इतना बड़ा हॉल था उसमें इतने सारे लोग बैठे, सब बैठकर रो रहे हैं ऐसे। और वो जानते थे इनमें से कई भक्तों को, जो लोग आए थे वहां उनको जानते थे और देखते थे कि इन बाहर जीवन में इनका क्या जीवन है। बाहर सब तरह के कुछ पाप करते, कोई भक्ति का लक्षण नहीं, लेकिन यहाँ आकर फिर वो आंसू सामंत, वो क्या है, वो संवर्तक बादल की तरह, वो इसका कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है ऐसे। अगर वास्तव में किसी की इतनी भक्ति है तो उसका जीवन भी परिवर्तित हो जाना चाहिए। बाकी बुरे पाप भी करते रहे बाहर, बुरी आदतें छूटी नहीं, तो इस तरह से ये सहजी भी है। ऐसे केवल लोगों को गलत मार्गदर्शन करते हैं, फिर भगवान जैसे उनसे चाहे वो करवा सकते हैं। गौड़ी संप्रदाय में ऐसी चीज को अनुमति नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि लोग खड़े हैं, देख रहे हैं मुझे, तो तुरंत संभल गए, अपने आप को उन्होंने संभाल लिया ताकि दूसरों के सामने प्रकट न हो।